सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेणमिहुं वेयणमहाहियारं विविहियारं परुवेमु। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना काल विधान अनियोग द्वार अपना चल रहा है। कर्मों का काल कितना है, स्थिति कितनी, उसकी बात है यहाँ पर। उसमें हम पृष्ठ संख्या 117 पर आ गए, 117। कल हमने आयु की उत्कृष्ट वेदना किसको होती है उसको देखा था, कि जो मनुष्य और तिर्यंचे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त वो अधि उत्कृष्ट आबादा सहित नारकी या देव की 33 सागर की आयु बांधता है, उसके आयु की वेदना का काल की अपेक्षा आयु की वेदना उत्कृष्ट होती है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं अनुत्कृष्ट वेदना किसके होती है। तो एक समय कम, दो समय कम, ऐसे अलग अलग विकल्प हम देख रहे थे। तो उसको सारे को असंख्यात भाग हानि कहेंगे। एक समय कम हुआ, दो समय कम हुआ, तो 33 सागर की अपेक्षा वो असंख्यात वा भाग है। ऐसे हानि होते 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 जघन्य असंख्यात से भाग देने पर एक खंड प्रमाण हानि होगी, तब तक तो असंख्यात भाग हानि कहेंगे, उसके बाद संख्यात भाग हानि कहेंगे। अब यहाँ 117 पर पढ़ते हम, यहाँ अंतिम लाइन पढ़ते 116 पृष्ठ की। इस प्रकार संख्यात भाग हानि होकर तब तक जाती है जब तक उत्कृष्ट आयु का एक समय कम अर्ध भाग ही नहीं हो जाता। संख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि कब तक, उसका आधा भाग में एक समय कम इतना उसमें से हीन हो जाएगा वहां तक। अब आगे पढ़ते हैं, पुनः उत्कृष्ट आबादा को करके उत्कृष्ट आयु के अर्ध भाग को बांधने पर संख्यात गुण हानि होती। गुणा हानि यानी उतने हुए भाग प्रमाण, संख्यात्वा भाग हुआ ना, दो भाग, दो दूसरा भाग हुआ तो संख्यात्वा भाग हुआ, उसमें एक समय कम तक संख्यात भाग हानि कहते थे। अब आधा हो गया, 33 सागर की आयु आधी हो गई, तो वहां क्या कहेंगे हमें, संख्यात गुण हानि। उल्टा बोल रहे अब, संख्यात भाग हो, संख्यात भाग आने, संख्यात भाग आने, संख्यात भाग आने, संख्यात भाग आने कब तक, आधे से एक समय कम तक। उसके बाद क्या होगा, आधा होने पर क्या होता है, संख्यात गुण हानि कहेंगे उसको। पश्चात एक समय कम अर्ध भाग के बांधने पर भी संख्यात गुणहानि ही होती है। इस प्रकार संख्यात गुणहानि तब तक जाती है यानी तब तक होती है जब तक कि उत्कृष्ट आयु को जघन्य परिता संख्यात से ये पूरा रिपीटेड आया है। एक मिनट ऊपर पढ़ते हैं, पुनः उक्कसा बाहुं काउनो उक्कसा उस अध्ये पबदे संख्य जो गुनाहनी हो दी पुनः समूने अध्ये पबदे भी संख्य जो गुनाहनी चेव एवं संख्य जो गुनाहनी ताव गच्छति जावो उक्कसा हुम जहन परिता संख्य जेन खंडे दुन तत्ते एक खंडम रुवाहियम शेषमति। अच्छा बाकी कितनी बात कितनी शेष रहती उसकी बात चल रही है। हाँ पहले हमने उससे भाग दिया था संख्या परिता जंगन परिता संख्या से, अब हमने आधी की आयु आधी से भी घटती 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 ऐसे बता रहे हो तो क्या कहते देखो। इस प्रकार संख्यात गुणहानि तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट आयु को जघन्य परिता संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक अधिक एक खंड शेष रहता है, एक अधिक यानी एक समय अधिक। ऊपर लिखा ना एक खंडम रुवाहियम शेषमति, पहले हमने जो देखा था एक खंड का उसमें से हानि होती थी तो हम संख्या असंख्यात भाग हानि कहा था। देखो आपको पढ़ना है ना, ये लेफ्ट साइड पर 116 नंबर के पृष्ठ में नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन उसमें क्या लिखा था, असंख्यात भाग हानि तब तक होती जाती थी जब तक जघन्य परिता संख्या से उत्कृष्ट आयु स्थिति को खंडित करने पर उसमें से एक खंड प्रमाण हानि नहीं हो जाती। नहीं समझे, जैसे हम मान लेते 16 का हमने मान लिया ना जघन्य परिता संख्यात के 16 संख्या हमने नक्की की है तो 1000 हम मूल मान लेते हैं, मूल जो आयु की लंबी स्थिति 1000 है, 1000 समय उसमें से 16 को भाग 16 का भाग देना, अभी 16 से गिन लेना समझने के लिए, तो 16 की 16 का भाग देंगे तो कितना होगा, एक खंड 100 प्रमाण होगा। तो कहते हैं एक खंड प्रमाण हानि नहीं होती, यानी 1600 में से जब तक 100 घटते हैं 1500 हो जाते हैं घटकर तब तक तो असंख्यात भाग हानि कहेंगे। अब यहां जो बात बता रहे हैं देखो, अब यहां क्या कहते हैं, उत्कृष्ट आयु को, ये तीसरी चौथी लाइन पढ़ रही हूं, जघन्य परिता संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक अधिक एक शेष खंड शेष रहता है। अब जो हमने 1600 को 16 से भाग दिया था 100 आया था तो 100 शेष रहे यानी घटे कितने 1500 और उसमें से भी एक अधिक किया यानी रिमेनिंग 101 रिमेनिंग रहते हैं तब तक क्या कहेंगे उसको, संख्यात गुणा हानि। नहीं 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 वहां से पढ़ रही मैं तीसरी चौथी लाइन में पढ़ी, पहले जो हमने देखा था जघन्य परिता संख्यात से भाग देने पर एक भाग जितना हानि होती थी यानी 1600 से घटकर 1500 हुए थे। अब यहाँ पर 117 पृष्ठ पर जो समझा रहे हैं वो शेष कितना रहा, तो एक खंड प्रमाण शेष रहा यानी 100 बाकी उसमें एक मिला दो तो 101 बाकी रहे तब तक तो उसको संख्यात गुणा हानि ही कहेंगे। ख्याल में है यहाँ का, यहाँ हमें पहले ऐसा लगा कि वैसी बात क्या यहाँ क्या आई। हाँ अब यहाँ से असंख्यात गुणा हानि ही होकर जाती है। इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिए जब तक पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबाधा करके देवों में 10,000 वर्ष प्रमाण आयु को बांधकर स्थित नहीं होता। हमें विकल्प अलग अलग बता रहे हैं, एक एक समय घटते 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 10,000 वर्ष आबाधा तो उतनी रखी उत्कृष्ट और यहाँ आयु में घटाते घटाते 10,000 वर्ष तक लाया। पश्चात इस आयु के समान मनुष्य आयु को ग्रहण कर, इस आयुष्य के समान ने 10,000 वर्ष की मनुष्य आयु ली उसको ग्रहण कर, कहां पर होगी 10,000 वर्ष, भोग भूमि में कर्म एक पूर्व कोटि तक तो कर्म। हाँ हाँ तो यहां कहते इस आयु के समान मनुष्य आयु को ग्रहण कर एक समय कम दो समय कम इत्यादि क्रम से अधस्थिति के गलने से, अधस्थिति यानी नीचे के निषेक, मनुष्यायु की बात की है ना, अधस्थिति के गलने से भवसिद्धि के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्व कोटि के तृतीय भाग से अधिक देखो, अभी देवायु बांध रहा था, अभी तक अभी मनुष्यायु को लेना है, मनुष्यायु बांध रहा है, तो 10,000 वर्ष की मनुष्यायु बांध रहा है, वो पूर्व कोटि वाला ही लेना है, बांधने वाला पूर्व कोटि का लेना, और जिसकी आयु बांध रहा है वो 10,000 वर्ष में एक समय कम, देवों में तो 10,000 से कम नहीं बांध सकता, देव हो या नारकी हो, अब मनुष्यों में तो बांध सकता है 10,000 वर्ष में एक समय कम, दो समय कम, तो वहाँ वो कम करते जाना, इत्यादि क्रम से अधस्थिति के गलने से भवसिद्धि के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्व कोटि के तृतीय भाग से अधिक व एक समय कम 33 सागरोपम प प हुआ है, भवसिद्धि किसको कहा है? मैं उस पर विचार कर रही हूँ। एक समय कम 33 सागरों प्रमाण स्थान विकल्प और स्वामित्व विकल्प प्राप्त प्राप्त होता है, प्राप्त होते हैं। देखो क्या कहते हैं, एक समय कम दो समय अधिक स्थिति गलने से नीचे की स्थिति गलती जाती चली जाती है, ऐसा जीव लिया है भवसिद्धि के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये यहाँ बांधने वाला जीव ही नहीं लेना है, अचरम शरीर ही लेना है 10,000 वर्ष का, हमें आयु की स्थिति उतनी घटित करनी है 10,000 वर्ष की मनुष्य आयु वाला, अभी वो जन्मा है तो भवसिद्धि के उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, तो उसका एक एक समय गलता चला जाएगा, ऐसा जीव लिया, वो गलने से क्या उसके एक एक समय कम हुई ना, तो भवसिद्धि के अंतिम समय में उसका एक समय आयु रहेगी। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, 33 सागर तो उत्कृष्ट थी और उसमें एक समय कम लिया था हमने, आबाधा प्लस 33 सागर में एक समय कम, ये अनुत्कृष्टों के विकल्प वहां से शुरू हुए थे, और जघन्य में जघन्य कहाँ तक आके रुके, एक समय वाला, तो कितने विकल्प हुए स्थान के, इतने सारे जितने हमने देखे 33 सागर और आबादा, उसके जितने समय है उतने विकल्प हो गए, एक एक समय वाला एक एक विकल्प, तो इतने स्थान हो गए। बांधने वाला लिया ही नहीं है, आयु बांधने वाला लिए नहीं, वर्तमान आयु ही लिए, आयु की स्थिति घटित करनी है, पहले लंबी इसलिए लिया था क्योंकि हमको अधिक से अधिक बताना था, आबादा प्लस 33 सागर घटित करना था, अब यहाँ क्या घटित कर रहे, घटते 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 कहाँ तक आए, 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में एक समय वाली आयु शेष रही, वहां तक घटित किया है। इतने उसके विकल्प हो गए, पूर्व कोटि प्लस एक समय कम 33 सागर, इतने अलग अलग विकल्प हो गए, क्योंकि हम 1, 2, 3, 4 गिनो ना, कहाँ तक गिनना है, आबादा प्लस 33 सागर में एक समय कम, वो एक समय में उसमें ऐड कर दो तो 33 सागर वाला उत्कृष्ट विकल्प होगा, हमें अनुत्कृष्ट विकल्प कौन से देखने हैं, नहीं आयु बांधने की बात नहीं, यहाँ पर नहीं, ये बात यहाँ तो मनुष्य आयु चरम शरीरी वाले के लिए है, विकल्प जितने हो गए,
तो
उस समय आयु बांधी तो उसको लेकर लिए ना सारे। देखो आपका ऐसा कहना है, ये पूर्व आयु उसमें वन थर्ड में बांधी और फिर यहां से लेकर हमने यहां तक आयु बांधी, तो आयु की स्थिति इतनी हुई ना। भले इसमें निषेक है क्या नहीं उसकी बात नहीं है, पहले ही समय में उसकी कितनी स्थिति अभी 33 सागर और प्लस आबादा ये पूरी है ना, उस समय बांधी, उस समय वो समय भी है वहां पर मौजूद। अब इसको एक 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 समय घटाते 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 वो बांधने वाले को भी हमने छोड़ दिया और किसको पकड़ा, क्योंकि 10,000 वर्ष तक तो देवायु को लिया था आबादा प्लस 10,000 वर्ष। अब उसमें भी अन्य अन्य विकल्प अन्य आयु को बांधने वाला ऐसा लिया, फिर उसको भी छोड़ दिया और अंत में क्या लिया, 10,000 वर्ष की मनुष्य आयु वाला ही लिया घटाते घटाते, और फिर उसमें भी एक एक समय घटाते घटाते, क्योंकि अधस्थिति गलन यानी क्या, जो मनुष्य आयु भोग रहा है भुज्यमान आयु का एक एक निशय गल रहा है, तो 10,000 वर्ष में एक एक समय कम होते 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 एक समय बाकी रहा, उसको भव सिद्धि कहा, उसी भव में मोक्ष जाने वाला जीव। अब कहते अब यहां यानी हमने उत्कृष्ट से लेकर जघन्य तक सभी विकल्प देखे, अनुत्कृष्ट आप कहेंगे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ही बताए, तो जघन्य भी एक अनुत्कृष्ट है ना, तो उसको भी बता दिया। अब यहां छह अनियोग द्वारों के द्वारा जीव समुदाहार को कहते हैं यथा, अभी छह अनुयोग द्वार हमेशा जो प्ररूपणा प्रमाण श्रेणी उसके बाद हाँ भागा भाग अल्पभूत वह एक रह गया ना श्रेणी, श्रेणी देखो भागा भाग उसके आगे एक रह गया अवहार, अवहार रह गया अवहार भागार भागा भाग और अल्पभूत तो ये छह अनुयोग द्वार बताएंगे, तो उसमें प्ररूपणा क्या करेंगे, उत्कृष्ट स्थान में जीव है बस हो गई प्ररूपणा, उसके अनंत नीचे के स्थान में भी जीव है इस प्रकार अनुत्कृष्ट जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिए, अनुत्कृष्ट जघन्य अनुत्कृष्टों में मिनिमम वहां तक ले जाना चाहिए। आयु के उत्कृष्ट स्थान में असंख्यात जीव है, क्योंकि नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधने वाले असंख्यात जीव पाए जाते हैं। क्या सुना, 33 सागर वाले आयु को बांधने वाले असंख्यात जीव पाए जाते हैं, असंख्यात एक साथ उत्पन्न नहीं होगी वहां पर, परंतु अलग अलग समयों में बांध रहे हैं और 33 सागर की बांध रहे, तो जो बांधने वाले ही जाके वहां उत्पन्न हो गए, तो हमने देखा था कि प्रत्येक नरक में असंख्यात जीव है, तो 33 सागर नरकायु बांधने वाले भी असंख्यात जीव है, और नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधने वाले असंख्यात जीव पाए जाते हैं, ये सारे स्वयंभू रमण समुद्र वाले महामत्स्य है ना, मनुष्यों में से तो संख्या चले जाएंगे। हाँ और सर्वार सिद्धि के बांधने वाले कितने होंगे, संख्या ही हो गए हाँ, सातवें नरक के वैसा नहीं आप अलग कुछ होता है। इसी प्रकार सब स्थानों में से जानना चाहिए, विशेषता इतनी है कि एकेंद्रिय के योग्य स्थानों में से एक एक स्थान में अनंत जीव है। एकेंद्रिय के योग्य भी स्थान हो गए ना बीच में, जैसे अंतर्मूर्त वाले हो गए या जो कोई हो गए एकेंद्रिय के योग्य आयु वाले, एकेंद्रियों में भी बड़ी आयु वाले होते हैं, पर्याप्त पृथ्वी का एकादि की बड़ी बड़ी आयु होती 22,000 वर्ष, तो उनके योग्य जो है, अब यहाँ जो एकेंद्रियों में जो निगोद है अंतर्मूर्त वाले हो गए वे, तो उसमें तो अनंत जीव पाए जाएंगे। उसके नीचे के शपक श्रेणी में ही पाए जाने वाले स्थानों में संख्यात जीव है, यानी शपक श्रेणी में भी है ना, क्योंकि हमने देखा था एक 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 निषेक गल रहा है, तभी तो आयु के छोटे विकल्प हुआ, उनका कितना होगा क्षपक श्रेणी के बाद 13वें-14वें गुणस्थान का जो काल है शेष, उतनी आयु के विकल्प वहां भी बताएंगे, कोई कम से कम काल में मोक्ष जाने वाले होंगे अंतर्मूर्त में, तो उनका अंतर्मूर्त वाला होगा। श्रेणी प्ररूपणा करना शक्य नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में विशिष्ट उपदेश का अभाव है। ऐसा नहीं कह सकते कि स्थान में इतने इतना फिर आगे के ऐसा। अब अवहार काल, उत्कृष्ट स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से सब स्थानों के जीव कितने काल के द्वारा अपहृत होते हैं। सब स्थानों के जीव यानी सभी वो आयु के अलग अलग विकल्प वाले जीव, यानी उसमें सभी जीव आ गए, सभी संसारी जीव आ गए, ऐसा कहो ना। क्योंकि वेदना किसमें होगी, सिद्धों में तो नहीं होती है, कर्म तो संसारी जीवों में है। उक्त प्रमाण से वे अनंत काल के द्वारा अपहृत होते हैं, क्योंकि अनंत जीव डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट स्थान में जो असंख्यात पाए जाते हैं तो उसकी संख्या अनंत आएगी, तो अवहार काल का प्रमाण अनंत होगा। कितने काल से अपहृत होते हैं यानी अवहार काल कितना है तो अनंत है। इसी प्रकार त्रसकायिक प्रायोग्य यानी त्रसकायिकों के योग्य सब स्थानों के जीवों की प्ररूपणा करना चाहिए। त्रसों में कहां से कहां तक हो गए विकल्प, ये जो अभी हमने 33 सागर वाला देखा था मैक्सिमम, वहां से लेकर त्रसों में, हाँ एक समय वाला भी होगा उसमें, तो प्ररूपणा करना चाहिए। एकेंद्रीय प्रायोग्य स्थानों संबंधी जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं। उक्त प्रमाण से वे अंतर्मूर्त काल के द्वारा अपहृत होते हैं। अंतर्मूर्त में असंख्यात समय है, क्योंकि इस टोटल जीव अनंत है, उसको एकेंद्रीय की वाले अनंत से भाग देंगे तो असंख्यात संख्या आती है, तो उसको कहा कि अंतर्मूर्त द्वारा अपहृत होते हैं। उसमें अंतर्मूर्त में जो समयों की संख्या है उसको लेना है। इसी प्रकार सर्वत्र ले जाना चाहिए। उत्कृष्ट स्थान में जीव, अभी अल्पभूतव कहेंगे, उत्कृष्ट स्थान में जीव उत्कृष्ट स्थान में जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है। पहले सभी जीव अनंत है, उत्कृष्ट स्थान में कितने वे भाग प्रमाण है ऐसा पूछा ना उन्होंने, हाँ तो वे उनके अनंत वे भाग प्रमाण है, क्योंकि संख्या असंख्यात है परंतु अनंत का वो अनंत वा भाग है। इसी प्रकार यहाँ पर असंख्यात में आता है। इसी प्रकार त्रस प्रायोग्य सब स्थानों में कहना चाहिए। वनस्पति कायिक प्रायोग्य स्थानों में सब स्थानों के जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण हैं, क्योंकि वनस्पति कायिक है अनंत और वो सबके असंख्यात वा भाग है। और वहां हमने देखा था उत्कृष्ट स्थान में जीव है असंख्यात, वो सबके अनंत वे भाग है। इसी प्रकार सर्वत्र वनस्पति कायिक प्रायोग्य स्थानों में कहना चाहिए। अब जघन्य स्थानों की बात करेंगे। जघन्य स्थानों में सबसे स्तोक जीव है, उत्कृष्ट स्थान में उनसे असंख्यात गुणे जीव हैं। जघन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव उनसे अनंत गुणे हैं, नीचे का छोड़ो ऊपर का छोड़ो और बीच में उत्कृष्ट से भी अनंत गुणे होंगे उसमें। अनुत्कृष्ट स्थान में जीव उनसे विशेष अधिक है, यानी उसमें जघन्य को जोड़ देना तो विशेष अधिक हो जाएंगे। अजघन्य स्थानों में जीव उनसे विशेष अधिक है, जघन्य को छोड़ो और उत्कृष्ट को मिलाओ तो सारे अजघन्य स्थान होंगे, तो वो विशेष हो गए। अब दोनों को रखो, उत्कृष्ट को भी रखो अजघन्य को और सबको, और सब स्थानों में जीव उनसे विशेष अधिक है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। ये उत्कृष्ट स्वामित्व हमने ज्ञानावरण में शेष छह कर्मों में और आयु में देखा। स्वामित्व की प्ररूपणा चल रही है ना अपने, पहले हमने पद मीमांसा देखा, आप स्वामित्व, स्वामित्व में उत्कृष्ट को देखा, आप जघन्य को देखेंगे। सामित्तेन जहन्न पदे नानावर्णीय वेदना कालदो जहन्या कस्स। स्वामित्व से जघन्य पद में ज्ञानावरणी की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, जघन्य पद में यह निर्देश पूर्वोक्त अधिकार का स्मरण कराने के लिए कहा है। शेष कर्मों का प्रतिषेध करने के लिए ज्ञानावरणीय पद का निर्देश किया है। काल के निर्देश का प्रयोजन क्षेत्राधिकों का प्रतिषेध करना है, यानी यह क्षेत्रों की या द्रव्य यानी प्रदेशों की बात नहीं है, काल की बात है। अब शंका, पूर्वानुपूर्वी क्रम को छोड़कर पश्चातानुपूर्वी से जघन्य स्वामित्व की प्ररूपना किस लिए की जा रही है? पूर्वाणि पूर्वी यानी क्रम से हम कहेंगे पहला दूसरा तीसरा, और उल्टा कहेंगे तो पश्चातानुपूर्वी। रिया आप महावीर भगवान फिर पार्श्वनाथ भगवान ऐसा कह सकते 24वें, हाँ फिर 23वें, फिर 22वें, बोलो 24वें 23वें 23वें कौन है? 23वें भगवान कौन है? उल्टा है, किया था ना याद कि भूल गई? शुरू से अंत तक पढ़ सकती है? पहले दूसरे तीसरे, पहले कौन है?
पहले
घबरा गई, ऋषभ देव है ना?
पहले आदिनाथ,
आदिनाथ दूसरे,
दूसरे दूसरे अजितनाथ,
अरे सब हाँ संभवनाथ, हाँ तो पहला दूसरा तीसरा ऐसा कहेंगे हम तो उसको हम कहेंगे पूर्वानुपूर्वी, और उल्टा क्रम से कहेंगे तो पश्चातानुपूर्वी। समाधान, क्योंकि तीनों ही अनुपूर्वियों से तीसरी कौन सी रहेगी? यथा तथा अनुपूर्वी, किसी का भी एट रैंडम कोई भी नंबर लेना। तीनों ही अनुपूर्वियों से प्ररूपणा करने पर कोई दोष नहीं होता, यह जतलाने के लिए यहाँ पश्चात अनुपूर्वी क्रम से प्ररूपणा की गई है। अथवा दूसरी बात क्या है, जघन्य स्थान की अपेक्षा समस्त स्थान भेदों का संग्रहकर्ता होने से उत्कृष्ट स्थान प्रधान है। जघन्य स्थान में तो एक ही है और उत्कृष्ट में वो तो प्रधान है ना, वो अधिक उसमें काल बड़ा है बहुत, इसलिए उसको प्रधान कहा। यह ज्ञात कराने के लिए पहले उत्कृष्ट स्थान की प्ररूपणा की गई है, शेष कथन सुगम है। अब ये किसको होती है जघन्य वेदना, इन्हें काल काल की अपेक्षा है ना, कहते अन्न दरस चरिम समय छदुमत्थस तस नानावरणीय वेणा कालादो जहन्ना। जो कोई भी जीव छदमस्त अवस्था के अंतिम समय में वर्तमान है, उसके काल की अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्म की जघन्य वेदना होती है। छदमस्त का अवस्था का अंतिम समय कौन सा है? बारवा गुणस्थान क्षीण कषाय नाम का, उसका अंतिम समय। तो वहां कितना बंध है? बंध नहीं है, उदय है ना, ज्ञानावरणी का उदय का अंतिम समय है वहां। हाँ। अब कहते जो कोई भी, ऐसा लिखा ना अन्न दरस, ऐसा क्यों कहा? कहते अवगाहनादिक भेदों से जघन्य काल वेदना के होने में कोई विरोध नहीं है। कौन कौन से भेद हो सकते हैं? अवगाहना यानी शरीर का साइज, 3.5 हाथ के हो या 500 धनुष के हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 525, अच्छा 525 धनुष। दूसरे कौन से भेद हो सकते हैं? 12वें गुणस्थान वाले के अंतिम समय में अलग अलग अवगाहनादि भेद कहा ना, तो अवगाहन संस्थान अलग होगा, अलग हो सकते संस्थान अलग अलग होगा। सहनन तो एक वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होगा। वर्ण अलग हो, शरीर के वर्ण अलग अलग हो सकते, कोई काला है गोरा है तो उस कौन से क्षेत्र से है, आसन की अपेक्षा भी बराबर है, क्योंकि श्रेणी मांडी है ना, तो कोई खड़गासन में है कोई पद्मासन में, अलग अलग आसनों में भी हो सकता है, तो ऐसा कोई भी भेद वहां नहीं है, इसलिए वहां अन्य तरस से कहा, अन्य दरस। इसलिए सूत्र में अन्यतर पद का उपादान किया गया है। छद्म शब्द का अर्थ आवरण है, छद्मस्थ शब्द है ना, उसमें जो स्थित है वह छद्मस्थ कहा जाता है। ये कौन सा आवरण है? ज्ञानावरण की अभी यहाँ बात चल रही है। मैंने तो ज्ञानावरण दर्शनावरण है वहां तक, बारहवें गुणस्थान के अंत समय तक, तो उसको आवरण वाले जीव, आवरण में रहने वाले जीव, तो उसको कहा छद्मस्थ। उसके बाद क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी यानी सर्वज्ञ। उक्त छद्म का निर्देश करने से केवली का प्रतिषेध किया गया है, यानी केवली भगवान में ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है, ऐसा जतलाने के लिए यहाँ छद्मस्थ के अंतिम समय वाला लिया। अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ इस निर्देश का फल द्विचरम त्रिचरम, द्विचरम यानि अंत से दूसरा समय, त्रिचरम यानि अंत से तीसरा, आदि समयों में वर्तमान छद्मस्थों का प्रतिषेध करना है। शंका, क्षीण कषाय गुणस्थान के द्विचरम समय में जघन्य वेदना का स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता? ये तो आसान है ना, इसे तो नहीं, क्योंकि वहां ज्ञानावरणीय की दो समय प्रमाण स्थिति देखी जाती है, दो निषेक बाकी उसके, अंतिम समय में अंतिम निषेक खिरेगा तब हम कहेंगे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो चुका। इसी प्रकार त्रिचरम आदि छद्मस्थों में भी जघन्य वेदना के स्वामित्व का अभाव जानकर कहना चाहिए। इसीलिए क्षीण कषाय के अंतिम समय में ज्ञानावरण कर्म स्कंध की एक समय वाली स्थिति युक्त जीव जघन्य वेदना का स्वामी होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। उसका अंतिम एक निषेक बाकी है। हमने द्रव्य में देखा था अंतिम निषेक वाला भी हो सकता है, उसके नीचे की भी, क्योंकि कोई गुणित कर्मांशिक होता है, कोई क्षपित कर्मांशिक होता है, तो वहां तो परमाणु की संख्या की अपेक्षा तो अंतिम ही समय होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था, उसको उन्होंने घटित किया था, क्षीण कषाय वाला लिया था वहां पर। अब कहते 16 नंबर का सूत्र, तव वदिरित्तम अजहन्ना, जघन्य वेदना से भिन्न अजघन्य वेदना होती है। इस जघन्य वेदना से जो भिन्न है वह काल की अपेक्षा अजघन्य वेदना है, वह अनेक भेद रूप है। अब एक एक समय बढ़ते हुए सारे हम उसको अजघन्य कहेंगे, इसलिए उसके भेदों की प्ररूपणा करते हुए उन स्थानों के स्वामित्व की प्ररूपणा करते हैं। यथा कोई एक क्षपक परिपाटी से कर्मों का क्षपण करके क्षीण कषाय के अंतिम समयवर्ती हुआ, क्षपक श्रेणी वाला जीव की बात चल रही है। परिपाटी से यानी कर्मों का क्षपण करते हुए कहां कहां कर्मों का क्षय शुरू किया उसने? आठवें में से। आप क्या कहते हैं? हाँ, क्षपक श्रेणी में क्षय कहां शुरू किया उसने? हाँ बोलो भाई, आठवें से। कर्मों का क्षय कहां प्रारंभ किया मैंने पर? हाँ, चौथे में पहले उसने दर्शन मोहनी का कर दिया बस। परंतु यहाँ क्षपक किसको कहा? क्षपक श्रेणी वाले को। वो श्रेणी तो आठवें से हम उसको क्षपक कहते हैं, परंतु वहां एक्चुअली क्षपणा का जो प्रोसेस चल रहा है, कर्मों का क्षय होने का कार्य, वो तो नौवे गुणस्थान में होगा। हाँ नहीं, गुणश्रेणी तो वो आठवें से भी होती है, अंतरकरण के बाद। हमने देखा था ना उसमें क्या होता है, पहले वेद का हो जाता है, वेद है वो तो पुरुष वेद है, पुरुष वेद है वो तो क्रोध रूप से होते, क्रोध मान रूप से होते, मान माया लोभ से होते, माया लोभ रूप से होते, तो क्षय हो जाता है। और इतना ही नहीं, परंतु हमने दूसरे जो कर्म देखे थे, 13 प्रकृतियों का क्षय होता है यहाँ पर, एक इंद्रिया द्विंद्रियादि वो तिर्यंज गति संबंधी और नरक गति संबंधी जो कर्म है उनका क्षय यहाँ पर होता है। नौवे गुणस्थान में बहुत मेजॉरिटी क्षय का कार्य होता है। ये अपना भी सपना का विषय नहीं है यहाँ पर, सपना सार में हमने ज्ञानावरणी का क्षय तो कहाँ पर होगा? क्षीण कषाय के अंतिम समय, हाँ बारहवें गुणस्थान के अंत समय में। परंतु क्षपणा का कार्य कहाँ हो रहा है मैंने पूछा था ना, ये अन्य 13 प्रकृति और फिर मोहनिया, मोहनिया का क्षय कहाँ पूरा हो जाता है? दसवें के अंत समय, और फिर ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतरा है, उसका क्षय कहाँ होगा? बारहवीं के अंत में। तो तेरहवें गुणस्थान में कितने कर्मों का क्षय होता है? एक भी नहीं होता। उदय का अभाव हो जाता है, कर्मों का क्षय नहीं होता वहां पर। अब देखेंगे आगे। हाँ, सत्ता में पड़े रहते हैं, उदय का अभाव हो जाता है बहुत सारे कर्मों का। अभी मैं उदय की विच्छेद नहीं पूछूंगी। 29 है वहां पर। देखो, कोई एक शपक परिपाटी से कर्मों का क्षपण करके क्षीण कषाय के अंतिम समयवर्ती हुआ, वहां यथा योगी जितने कर्म क्षय करने, वो यहाँ का विषय नहीं है, तो ऐसे कर्मों का क्षय करते करते क्षीण कषाय के अंत समय में आया। उक्त जीव के क्षीण कषाय होने के अंतिम समय में एक समय काल प्रमाण एक स्थिति रहती है, यानी एक समय वाला अंतिम निषेक रहता है। स्थिति यानी निषेक, हमने दी निषेक रचना होती है, हर समय में एक एक समूह जो परमाणु का निकलता है उसको निषेक कहते हैं। तो ऐसा अंतिम समय में लास्ट पूरा जितने परमाणु है वो सब एक साथ निकलेंगे, क्षय हो जाएंगे, उदय होकर खिर जाएंगे, तो हम उसको कहते हैं वो अंतिम स्थिति है उसकी, उसको एक स्थिति कहा। उसके ज्ञानावरणीय की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य होती है, यह जघन्य काल वेदना का स्वामी है। काल वेदना है ने कर्मों का काल की अपेक्षा जो कथन चल रहा है। पुनः एक दूसरा जीव पूर्व विधि से आ करके, पूर्व विधि से ने क्षपणा करके आया है, क्षीण कषाय के द्विचरम समयवर्ती हुआ, वह अजघन्य काल वेदना का स्वामी है। जो जघन्य नहीं उसको हम अजघन्य कहेंगे, उसके दो समय अभी बाकी है। यह द्वितीय स्थान है। पुनः एक और जीव क्षीण कषाय के त्रिचरम समयवर्ती हुआ, वह भी अजघन्य काल वेदना का स्वामी है, वह तीसरा स्थान है। इसी प्रकार चतुर्थ पंचम आदि के क्रम से क्षीण कषाय काल के संख्यातवे भाग तक उतारना चाहिए। ये सब निरंतर स्थानों के स्वामी होते हैं। निरंतर स्थान है एक से एक समय वाले, एक एक समय वाले। ऐसा क्यों कहा? हम मान लेते यहां से यहां तक क्षीण कषाय का काल है। हाँ, क्या देखा? सांतर निरंतर देखा था, परंतु उसका कारण क्या है? यहाँ तो एक 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 समय बढ़ते हुए हमने समय देखे। हाँ, देखो देखो, हमने ऐसा देखा था क्षीण कषाय में क्या होता है, क्षीण कषाय के स्टार्टिंग से क्या होता है, स्थिति कांडक घात होते हैं। तो स्थिति कांडक घात होने से क्या होगा, स्थिति कट होती चली जाती है, कांडकों में कट होती है। और जब अंतिम संख्यात्वा भाग शेष रहा तो क्या होता है, अभी कांडक होना बंद हो जाता है, कांडक होना बंद होता है, तो स्थिति का क्या होगा, एक एक समय में एक एक गलेगी, एक एक निषेक गलेगा ना। अभी पहले क्या होता था, कांडकों में गलता था, अब इसलिए अंत से जघन्य से एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक ऐसे स्थान बताए। तो कहां तक आए, क्षीण कषाय के संख्यातवे भाग तक। अब आगे क्या होगा देखेंगे। ये निरंतर स्थानों के स्वामी होते हैं। पश्चात दूसरा एक जीव पूर्व विधि से आकर पूर्व की विवक्षित स्थिति से तदनंतर अधस्तन क्षीण कषाय हुआ, यह सांतर अपुनरुक्त स्थान है। अभी अंतर रख, अधस्तन नीचे का, अधस्तन यानी उसके नीचे। अभी हमने निरंतर स्थान यहां से यहां तक देखे, उसके नीचे गैप छोड़कर यहां कोई स्थान होगा, बीच वाला कोई स्वामी नहीं होगा, इसको कहते ये सांतर। फिर वहां कोई उसको बताया, क्योंकि विवक्षित विवक्षित स्थिति कांडक की अंतिम फाली प्रमाण अंतर करके वह उत्पन्न हुआ है। यानी ये अंतिम फाली पढ़ने पर यहां आया था, तो यहाँ तक तो अंतिम फली वाला था, तो इसके बाद एकदम उसके कट होकर यहाँ आया था, तो अंतिम फली प्रमाण यहाँ गैप होगी बीच में, उतना अंतर करके ये नीचे आया। फिर वो पूरा जो स्थिति कांडक का जो काल है, उत्कीर्ण काल, वहां तक फिर निरंतर स्थान हो गए, वापस फिर गैप होगा। कल हमने उल्टा देखा था, उसमें ज्ञानावरण की उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट में देखे थे, तभी उसकी बात की थी। देखो क्या उत्पन्न हुआ, इस प्रकार अनिवृत्ति करण काल के असंख्यात वे भाग तक उतारना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति कांडघात होते 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 ऊपर चला गया, तो सांतर फिर निरंतर, फिर सांतर फिर निरंतर, हम उल्टे क्रम से देख रहे हैं, तो नीचे कहाँ तक उतारना, उसको अनिवृत्तिकरण काल के असंख्यात वे भाग तक उतारना चाहिए। वहां के अनिवृत्तिकरण के स्थिति सत्व से, अब अनिवृत्तिकरण तक ही क्यों उतारा, क्योंकि आगे तो अपूर्वकरण से ही ये स्थिति कांडक होना प्रारंभ हुआ था। तो अभी हमने कितना लिया, क्षीण कषाय, सूक्ष्म सांप्राय और अनिवृत्तिकरण का असंख्यात बहुभाग लिया, इतना सारा। उसके नीचे अभी कांडकों को हम भूल गए, हमने दूसरा कोई जीव उसके समान हो सकता है, कौन सा हो सकता है, देखो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के ज्ञानावरण का जघन्य स्थिति सत्व पल्लोपम के असंख्यात वे भाग से विशेष अधिक है। क्या कहता है, वहां के अनिवृत्तिकरण के स्थिति सत्व से, वहां जो स्थिति सत्व बाकी है अनिवृत्तिकरण वाला, उससे बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव का जो ज्ञानावरण का जघन्य स्थिति सत्व मिनिमम पॉसिबल पल्लोपम के असंख्यात वे भाग से विशेष अधिक है। हाँ वो बताएंगे ना, ये किसी बीच वाले को लेना है, सूक्ष्म के ऊपर है वो, उसको सारे पुनरुक्त स्थानों में चले जाएंगे, पुनरुक्तों में जाएंगे ना उसको। अब हमने ऐसा कोई अभी जीव लिया, बादर एकेंद्रीय वाला यहाँ ले लिया, जैसे हमने ज्ञानावरण के भी अनुत्कृष्ट में बादर एकेंद्रीय को ही लिया था, हर एक की बात अलग अलग नहीं की, जैसे बीच में असंगी के भी हो गए वहां पर चढ़ते समय, उसको तो नहीं लिया था, एक कोई बादर एकेंद्रीय को ही लिया था। पंचेंद्रिय संगी ज्ञानावरण के आप याद करो, उत्कृष्ट वेदना के बाद हमने ध्रुव स्थिति तक लाया था और उसके बाद बादर एकेंद्रीय में चले गए थे। सबकी बात नहीं करनी, बीच में जो कुछ यथा योग्य जो कॉमन है स्थान वो तो हो गए ही। तो बादर एकेंद्रीय पर्याप्त के जघन्य स्थिति सत्व को ग्रहण करके एक समय बढ़कर बांधने पर दूसरा निरंतर अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। हम जघन्य से ऊपर की ओर बढ़ रहे ना, इसलिए एक समय बढ़कर बांधने वाला जीव लिया। सांतर निरंतर थे अभी तक, अभी इसमें हाँ शंका, यह कौन सी वृद्धि द्वारा वृद्धिंगत हुआ है, एक समय बढ़ा है तो असंख्यात भाग वृद्धि के द्वारा वृद्धिंगत हुआ है। शंका, इस बढ़े हुए समय के निकालने के लिए भागहार क्या है। समाधान, इसके लिए भागहार बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति है, ध्रुव स्थिति यानी मिनिमम पॉसिबल जगन्य चो, क्योंकि बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति का बादर एकेंद्रीय की ध्रुव स्थिति में भाग देने पर जो एक समय लब्ध होता है उसे ध्रुव स्थिति को प्रतिराशि करके मिला देने पर वर्तमान वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है। कुछ नहीं, एक मिलाने पर यह स्थान उत्पन्न होता है, इतना ही बताना है उनको। उत्तरोत्तर दो दो समय बढ़कर बांधने वाले जीवों के भी असंख्यात भाग वृद्धि स्थान ही होता है, क्योंकि पूर्व भागहार के द्वितीय भाग का ध्रुव स्थिति में भाग देने पर दो समय आते देखे जाते हैं। उत्तरोत्तर तीन तीन समय बढ़कर बांधने वाले के भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है, क्योंकि ध्रुव स्थिति के तृतीय भाग का ध्रुव स्थिति में भाग देने पर वृद्धिंगत तीन समयों की प्राप्ति देखी जाती है। हमने तीन समय बढ़े वो कैसा निकाला? पहला एक समय कैसे निकाला था? ध्रुव स्थिति को ध्रुव स्थिति से भाग दिया, दो समय लाने के लिए ध्रुव स्थिति को आधे से भाग दिया, फिर तीन समय लाने के तीसरे भाग उसका वन थर्ड किया, चार चार समय उत्तरोत्तर बढ़कर बांधने वाले के असंख्यात भाग वृद्धि होती है, क्योंकि ध्रुव स्थिति के चतुर्थ भाग का ध्रुव स्थिति में भाग देने पर वृद्धि पाप चार रूपों की उपलब्धि देखी जाती है। इस प्रकार बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति के ऊपर बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति में जितनी पल्योपम शलाकाएं हैं उतने मात्र समयों की वृद्धि हो चुकने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। पल्योपम शलाकाएं एक पल्ले दो पल्ले तीन पल्ले पल्योपम शलाकाएं हैं ना, ध्रुव स्थिति की बात है, क्योंकि पल्योपम का ध्रुव स्थिति में भाग देने पर ध्रुव स्थिति की पल्योपम शलाकाओं प्रमाण वृद्धिंगत समयों की उपलब्धि देखी जाती है। हमने क्या देखा था? तीन समय बढ़ने के लिए ध्रुव स्थिति को तीन से भाग देकर उससे ध्रुव स्थिति को भाग दिया था। अब यहाँ कितने समय तक ले जाना चाहिए हमको, कितने समय बढ़ाना है? ध्रुव स्थिति में जितने पल्य है, ध्रुव स्थिति में कितने पल्य है, तो ध्रुव स्थिति को पल्य से भाग देना। हाँ, तो उतने समय बढ़ने तक ये बढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात एक समय की वृद्धि होकर बांधने वाले के भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है, क्योंकि कुछ कम पल्योपम का ध्रुव स्थिति में भाग देने पर एक अधिक पल्योपम शलाकाओं प्रमाण समयों की उपलब्धि देखी जाती है। देखो यहाँ ये क्या कहते हैं, पहले हम ध्रुव स्थिति को ध्रुव स्थिति से भाग देते थे, फिर ध्रुव स्थिति के आधे से, उसके दूसरे भाग से, तीसरे भाग से, चौथे भाग से। अब ये जो कोई असंख्यात भाग है ध्रुव स्थिति का, उसका प्रमाण कितना आता है? तो पल्ले आता है, तभी ओरिजिनल ध्रुव स्थिति को डायरेक्ट पल्ले से भाग दे रहे। तो जो संख्या आएगी तो वो भी हम उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। उसके बाद भी एक दो समय बढ़ेंगे तो भी असंख्यात भाग वृद्धि, क्योंकि वो बीच वाले अवक्तव्य वाले होते हैं ना। हाँ, अब कहते ध्रुव स्थिति में जितनी पल्योपम शलाकाएं हैं उनसे दूनी वृद्धि के होने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि होती है, क्योंकि पहले हमने ध्रुव स्थिति डिवाइडेड बाय पल्ले देखा। अब उससे दुगुनी होगी तो भी क्या होगा? हाँ, ध्रुव स्थिति डिवाइडेड बाय पल्ले का आधा, तो पल्ले का आधा भाग भी असंख्यात ही होता है, तो उसको भी असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। लिखा ना, क्योंकि पल्योपम के अर्ध भाग का ध्रुव स्थिति में भाग देने पर दूनी ध्रुव स्थिति की पल्योपम शलाकाएं प्राप्त होती है, यानी इतने समय समय बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए। इस प्रकार पल्योपम की गुणकारभूत शलाकाओं प्रमाण, यानी दो पल्ले प्रमाण, तीन पल्ले प्रमाण, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्रुव स्थिति डिवाइडेड पल्ले डिवाइडेड बाय दो, पल्ले डिवाइडेड बाय तीन, पल्ले डिवाइडेड बाय चार। तो जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? तीन बार पल्ले, चार बार पल्ले, इस तरह से। तो उसको कहते हैं गुणकारभूत पल्ले की गुणकारभूत शलाका, यानी दो पल्ले, तीन पल्ले, दस पल्ले, उसको पल्ले की गुणकारभूत शलाका कहते हैं। इतने पल्योपम प्रथम वर्ग मूलों की वृद्धि होकर बांधने वाले के भी क्या कहते हैं? पल्योपम की गुणकारभूत शलाकाओं प्रमाण, पल्योपम की प्रथम वर्ग मूलों की वृद्धि होकर बांधने वाले के भी असंख्यात भाग वृद्धि का ही स्थान होता है। एक समय, दो समय, तीन समय करते 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 कहाँ तक? वो गुणकारभूत शलाका कितनी है? दो पल्ले, तीन पल्ले, चार पल्ले, ऐसे। हाँ, प्रथम वर्गमूल गुणकार पल्ले का प्रथम वर्गमूल तक हुआ, वहां तक भी असंख्यात भाग वृद्धि का ही स्थान होता है, क्योंकि पल्लोपम के वर्गमूल का ध्रुव स्थिति में भाग देने पर ध्रुव स्थिति की पल्लोपम शलाकाओं प्रमाण पल्लोपम प्रथम वर्गमूलों की उपलब्धि पाई जाती है। इस प्रकार बादर एकेंद्रीय की ध्रुव स्थिति का भागहार पल्लोपम का द्वितीय वर्गमूल होकर फिर क्रम से हीन होकर तृतीय वर्गमूल होकर फिर आवली होकर अभी पल्ल्य फिर पल्ल्य का दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा भाग वर्गमूल तक आ गए, फिर पल्ल्य के वर्गमूल का भी वर्गमूल 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 करते गए फिर आवली तक आ गए। हाँ, फिर आवली होकर आवली के भी नीचे जाएंगे, आवली तो युक्ता संख्या था ना, जगन युक्ता संख्या, तो उससे भी उसके नीचे जाते 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 जब तक जघन्य परिता संख्यात प्राप्त नहीं होता तब तक बढ़ाना चाहिए, तब तक उसको हम असंख्यात भाग वृद्धि ही कहेंगे। इस प्रकार भागहार के बढ़ने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि होती है, क्योंकि जघन्य परिता संख्यात का बादर एकेंद्रीय की ध्रुव स्थिति में भाग देने पर वृद्धि प्राप्त अंक उपलब्ध होते हैं। ये जितनी वृद्धि प्राप्त कहाँ तक बढ़ते बढ़ते गए तो उसको कहते वो असंख्यात भाग ही वृद्धि है उसकी। ये वृद्धिंगत समय बादर एकेंद्री के विचार स्थानों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि ये पल्लोपम के संख्यातवे भाग प्रमाण है। हमने बादर एकेंद्रियों में कितने देखे थे, वो पल्ले के असंख्यातवे भाग ऐसे कुछ स्थान देखे थे, अब यहाँ कहते वो पल्ले के संख्यातवे भाग है यानी असंख्यात गुणे हो गए। आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पल्लोपम में भाग देने पर आवली के असंख्यात वे भाग का पल्लोपम में भाग देने पर बादर एकेंद्रिय के विचार स्थानों का प्रमाण उत्पन्न होता है। तथा बादर एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति के ऊपर एक समयादि की अधिकता के क्रम से बंध नहीं पाया जाता। एक एक समय अधिक कहाँ तक, तो बादर एकेंद्रियों में जो उत्कृष्ट पॉसिबल है वहां तक होगा, तो वो कितने हैं उसमें स्थान, पल्ले के असंख्यात वे भाग इतने हैं। ये कौन सा वाला असंख्यात वा भाग करना, तो पल्ले को आवली के असंख्यात वे भाग से भाग देना। अब ये तो अधिक 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 बंद की अपेक्षा से ये स्थान देखे, हमने कहाँ से शुरू किया था, एक समय वाला क्षीण कषाय का अंतिम समय, फिर दो समय तीन समय ऐसे संख्यात वे भाग तो निरंतर है, फिर स्थिति कांडक की अपेक्षा सांतर निरंतर ऐसे स्थान देखे थे, फिर बादर एकेंद्री की बात वहां से लिए, बादर एकेंद्री में भी जघन्य बंद करने वाला, फिर उसमें एक एक समय बढ़ते 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 यहाँ तक का जीव लिया, बादर एकेंद्रीय का उत्कृष्ट बंध करने वाले जीव की अपेक्षा यहाँ तक स्थान देखे। अब यहाँ आगे इसके आगे कहते हैं स्थिति घात का आश्रय करके उपरिम स्थानों की उत्पत्ति की प्ररूपणा करते हैं, यानी स्थिति घात होकर भी इतने इसके आगे के स्थान बढ़ते हुए स्थान देख रहे हैं हम, तो वो उत्पन्न करा के दिखाएंगे। क्या वृद्धिंगत समय, समय कितने बढ़े उसका प्रमाण बता रहे हैं। बादर एकेंद्रियों में स्थान कितने, पल्ले के असंख्यात विभाग, तो समय कितने बढ़े हैं यहां लिखा ना, देखो नीचे से पांचवी लाइन में, ये वृद्धिंगत समय बादर एकेंद्रिय के विचार स्थानों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। और विचार स्थान कितने हैं, तो पल्ले डिवाइडेड बाय आवली का असंख्यात अभाव। अब स्थिति घात का आश्रय करके उपरिम स्थानों की उत्पत्ति की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है, घात करके बादर एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति में से एक एक समय अधिक स्थापित करने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। हमने जैसे उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट में क्या देखा था, वो घात की अपेक्षा वहां नीचे नीचे कम होता चला गया था, अब यहाँ बढ़ते हुए को बताना है। हमने देखा बादर एक इंद्रिय में आने पर वो स्थिति कांडक घात भी होते हैं, तो उसमें तो जब तक उत्कीर्ण काल में तो एक एक समय गलता है और बीच बीच में कांडक का भी घात होता है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा वो निरंतर स्थान पाए जाते हैं। देखो फिर पढ़ती हूँ, दूसरी लाइन, घात करके बादर एकेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति में से एक एक समय अधिक स्थापित करने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है, पश्चात उपरिम स्थिति को फिर से घात कर बादर एकेंद्रिय के उत्कृष्ट स्थिति बंद से दो दो समय अधिक करके स्थापित करने पर वह दूसरा अपुनरुक्त असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान होता है, तीन तीन समय अधिक करके स्थापित करने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति को जघन्य परिता संख्या से खंडित करके एक खंड मात्र से वृद्धिंगत होकर स्थिति के स्थित होने तक ले जाना चाहिए। ध्रुव स्थिति यानी हमने उसमें मिनिमम स्थिति देखी थी, ये बढ़ते 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 यहाँ तक ले जाना चाहिए। पश्चात इसके ऊपर स्थिति घात से एक समय बढ़ने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि होती है, इसके छेद भागार को कहते हैं। यथा जघन्य परिता संख्यात का स के ऊपर बिंदी लगाना, विरलन करके ऊपर बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति को समखंड करके देने पर, देखो क्या करना है, बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति डिवाइडेड बाय जघन्य परिता संख्यात, तो उसके लिए क्या किया, जघन्य परिता संख्यात को विरलन किया। देखो आपको पता नहीं ना विरलन क्या होता है, हाँ एक 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 आपको पता है सब, तो चार का विरलन करो यानी चार संख्या एक एक में सब स्प्रेड अप कर दो, तो एक एक चार बार लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ क्या करना है, जघन्य परिता संख्यात वाली जो मिनिमम असंख्यात है उसका विरलन कर दो, एक एक में बिखेर दो, और उसमें क्या देना है, बादर एकेंद्रिय की जो ध्रुव स्थिति है उसको समखंड करके देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना उसमें, एक एक विरलन अंक के प्रति जघन्य परिता संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्राप्त होता है। बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति डिवाइडेड बाय जघन्य परिता संख्या जितना प्रमाण आएगा वो एक एक विरलन के प्रति आने वाला है। फिर चूंकि इसे एक समय अधिक चाहते हैं, यहाँ तक तो बढ़ा था हमने, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले गए, अभी हमको एक समय और बढ़ाना है, अतः एक अंक के प्रति प्राप्त राशि का नीचे विरलन करके, अभी जो एक खंड आया था वो नीचे दूसरा उसका विरलन कर देना, ऊपर उसको ही समखंड कर देने पर एक रूप का वृद्धि प्रमाण प्राप्त होता है। ऊपर से हमने मान लेते हैं कि कुछ, देखो हमने पहले 1600 लिए थे ना, वो 1600 का यहाँ फिट नहीं बैठेगा, परंतु कोई भी फिगर तो लेनी है हमको, 16 ये जघन्य परिता संख्यात को हमने 16 को विरलित किया और उसमें मान लेते 1600 कोई भी एक फिगर उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट की, तो हर एक के प्रति कितना आया, 100 आया, बराबर। अब इसमें से 100 लेके नीचे विरलन कर दो, ऐसे 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 100 हो जाएंगे, और दूसरा 100 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, तो एक 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 आएगा, हर एक के प्रति एक एक आएगा, एक रूप हमको बढ़ाना है ना, क्योंकि हमको 101 करना है। अब इसका एक इसमें देते रहो, तो इसमें एक देते रहो तो क्या होगा, उसकी बात अभी करेंगे वो। देखो एक रूप का वृद्धि प्रमाण प्राप्त होता है, यहाँ पांचवी लाइन तक आ गए बीच में, फिर इसको ऊपर देकर समकरण करके एक अधिक नीचे के विरलन प्रमाण स्थान जाकर उसको ही समखंड कर देने पर एक रूप का वृद्धि प्रमाण प्राप्त होता है। यदि एक रूप की हानि प्राप्त होती है तो ऊपरी मिरलन के बराबर स्थान जाकर कितनी हानि प्राप्त होगी। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर जो एक रूप का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है उसको ऊपर की विरलन राशि में से उसको घटाना पड़ेगा। क्या कहते हैं? देखो, ये 100 स्थान जाने पर एक की हानि होगी तो 16 स्थान में कितनी होगी? तो कम होगा ना, एक का कुछ भाग होगा। तो ऐसे यहाँ पर एक का असंख्यातवा भाग उसका प्रमाण आता है, यानी हानि कितनी, भागहार की हानि कितनी है, तो एक का असंख्यातवा भाग। उसको ऊपरी विरलन राशि में से ये आधा ही छोड़ा, विरलन आए, अच्छा उसमें से उसको घटाना है। पहले भाग किसका था? जगन्य परिता संख्यात का, तब जो कोई संख्या आती थी, जैसे हमने पहले 16 को 16 से भाग दिया तो संख्या 100 आती थी। अभी हमको 101 आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 16 में से कुछ घटाना पड़ेगा। नहीं समझे? 1600 को 16 से भाग दिया तो संख्या 100 आ गई। अभी हमको क्या करना? 100 के बदले हमको 101 आना चाहिए। भागाकार हमको बड़ा चाहिए तो भागहार कम करना पड़ेगा ना, तभी यहाँ बड़ी संख्या आएगी। 16 को बढ़ाएंगे तो इसके और संख्या घट जाएगी, छोटी हो जाएगी। यदि हम यहाँ 15 करते हैं तो 15 करते तो बहुत बड़ी जाएगी। 16 को अगर हम एक से कम करते हैं तो भागहार कितना आएगा? देखो, 1600 को 15 से भाग दो, 15 के 15 फिर 100 रहेगी ना, 15 पच्चीस 75 15 सक 5 10 15 सक 90 15 साथी 5 10 15 सक 90 और कुछ आगे तो 90 आ गया, तो 10 बाकी रहे तो 0 हो गए, और अपूर्णांकों में कुछ तो इतने बढ़ जाएगी। 16 के बदले हम 15 का भाग देंगे तो 100 के बाद 160 आएंगे, हमको वो नहीं चाहिए। हमको तो 101 भागहार आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कम करना पड़ेगा। तो कुछ कम का प्रमाण कितना है? 100 में 1 तो 16 में कितना? तो 16 डिवाइडेड बाय 100, 16 में से 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कर दो तो 101 भाग आएगा। देखो कैसे, 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 100 कितने आते हैं? 1600 माइनस 16 कितना आया? 1584। हाँ, 100 लिया है ना, हाँ अभी 15.84 अभी ये 100 निकालना है तो करके देखना है ना। देखो 1500 इससे भाग देना है, ने क्या करना है, यहाँ 1584 और यहाँ 100 बराबर है ना। हाँ अभी इसको भाग किसका जाएगा? 16 का तो जाना ही चाहिए। हमने 16 ही निकाले ना, तो 16 का भाग तो जाना ही चाहिए। सोलह नौ चौवे चालीस से पहले हमने 100 से भाग दिया था, गुणा किया था 16 को, तो 1600 आए थे, उसमें से एक 16 निकाला, यानी 99 16 रह गए, तो इस तरह से आया डिवाइडेड बाय 99। ये 100, हाँ कुछ गड़बड़ी, हाँ हाँ भागाकार छोटा ही करना था ना, 16 में से घटाना ही था, भागाकार छोटा ही करना है हमको। नहीं, 101 अक्खा आना चाहिए ऊपर, डायरेक्ट करना है ना, तो 1600 डिवाइडेड बाय 101 करो। तो उसका प्रमाण आएगा भागार का कितना, तो 101 के 101 हाँ, एक है नौ दहा चले का 59, ऊपर लिए जीरो, 15 का भाग जाएगा, फिर 5 का 505, फिर रहेगी 85, वही हुआ ना, 0.85 रहेगी, एटी फाइव डिवाइडेड बाई 101 था वो। जो कुछ है उतना ऐसा हाँ 101 आना चाहिए। हमारा कहीं गलती हो रही है करने में, ये ऊपर का विरलन किया, हाँ वही तो हमने किया था ना। देखो जब ये ऊपर की गाथा पढ़ेंगे, अच्छेदनस्य राशे रूपं छेदं वदन्ति गणितज्ञा, अंशाभावे नाशं छेदस्याहुस्तदन्वेव। जब राशि में कोई छेद नहीं होता तब गणितज्ञ उसका छेद एक मान लेते हैं, जिसको हम पूर्णांक राशि कहते हैं। हम जब चार संख्या लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या है, चार एकांश नीचे एक छेद है ऐसा मान लेते हैं। जैसे 3 = 3/1, और जब अब और अब लिखा है, जब चाहिए और जब अंश का अभाव हो जाता है तब छेदों का भी नाश समझना चाहिए। अंश का अभाव है ना, जीरो अगर लिखेंगे यहाँ, उन्होंने क्या लिखा देखो, 3/10 - 6/20 दैट इज इक्वल टू 6 - 6/20 यानी 0/20, उसका अर्थ होता है जीरो। अंश कोई नहीं रहा, जीरो ही रहा, तो छेद में कुछ भी लिखो तो उसका अर्थ तो जीरो ही होगा। तो छेदों का भी नाश समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस नियम के अनुसार समखंड करके घटा देने पर अवशिष्ट उत्कृष्ट संख्यात व एक रूप का असंख्यात बहुभाग भागार होता है। जैसे हमने जगन्य परिता संख्यात के लिए 16 माना था, अब कहते अभी कौन सा वो हीन कर दिया ना हमने उसमें से, तो क्या रहेगा, उत्कृष्ट संख्यात यानी 15 प्लस कुछ अपूर्णांक। जैसे हमने 15.84% मान लिया था, वैसे वहां भी आएगा। तो कहते हैं क्या रह गया, समखंड करके घटा देने पर, अभी भागार क्या हुआ, पहले जघन्य परिता संख्यात था, अब उत्कृष्ट संख्यात प्लस समथिंग अवशिष्ट क्या रहा, उत्कृष्ट संख्यात। अवशिष्ट ने अभी क्या बाकी रखा, उत्कृष्ट संख्यात वो एक रूप का असंख्यात बहुभाग, 1/असंख्यात, इतना आ गया अभी। बहुभाग भागार होता है, इसका बादर एकेंद्री की ध्रुव स्थिति में भाग देने पर अभिष्ट स्थान के वृद्धिंगत समय प्राप्त होते हैं। हमने देखा था ना, वो तो एक एक समय बढ़ते हुए उसका असंख्यात भाग वृद्धि ही होती चली गई थी, तो उसकी बात यहां बताते हैं। फिर स्थितिघात से उत्तरोत्तर दो समयों की अधिकता को प्राप्त स्थिति को ग्रहण कर स्थित हुए जीव के भी असंख्यात भाग वृद्धि का अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। देखो ये अपुनरुक्त स्थान किसे कहना, जैसे हमने पहले कोई संख्या ली थी, अब दूसरी संख्या लेकर मैं समझाती हूँ आपको। 1200/16 हमको पूर्ण संख्या आनी है ना, 16 हमने जगन्य परिता संख्यात मान लिया है, उसमें से एक कम करो तो 15 क्या होगा, उत्कृष्ट संख्यात होगी। तो 1200 को 16 से भाग देते तो कितनी आती है? अब 1200 को 15 से भाग देंगे तो 80 नहीं है, 75 आते हैं। मैं भी सबके साथ हाँ, 1200 को 16 से भाग देते तो 75 आते हैं। मारी सती छाने सोई सती 12 उधर से और यहाँ 80 आते हैं। 16 से यानी जघन्य परिता संख्यात से भाग देंगे तो हम क्या कहेंगे? वो असंख्यात भाग वृद्धि। और उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे तो हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि शुरू हुई। 75 बढ़ गए तो क्या कहेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि पहले से कंपेयर कर। और 80 बढ़ेंगे तो कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। अब ये 76, 77, 78, 79 को क्या कहेंगे? तो उसको अवक्तव्य स्थान कहते हैं, परंतु वो असंख्यात भाग वृद्धि में ही मानेंगे क्योंकि 15 के आगे ही संख्यात भाग वृद्धि शुरू हो जाएगी, उसके पहले के असंख्यात भाग वृद्धि ही मानने हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जघन्य परिता संख्यात से भाग देने पर जो संख्या आई थी, जैसे अपने 1600 को हमने 16 से भाग दिया था, तो उसमें 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, ऐसे आगे 100 से आगे बढ़ाते गए तो भी उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। कब तक? संख्यात उत्कृष्ट संख्यात से भाग देने पर बढ़ेंगे, उतने अगर बढ़ जाते हैं तो वहां से हम संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे उसको, है ना। बीच वालों को कोई अपूर्णांक से भाग दिया, हमने किसी पूर्णांक से नहीं दिया है, तो ये अपूर्णांक कहाँ है? उत्कृष्ट संख्यात के ऊपर बढ़ते हैं ना, इसलिए उसको अभी हम संख्यात भाग वृद्धि नहीं कह सकते बीच वाले स्थानों को। तो वही बात यहाँ लिखे, देखो यहाँ क्या लिखा, तीसरी लाइन ना। फिर स्थिति घात से उत्तरोत्तर दो समयों की अधिकता को प्राप्त स्थिति को ग्रहण कर स्थित हुए जीव के भी असंख्यात भाग वृद्धि का अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये रिपीटेड नहीं, इसलिए अपुनरुक्त कहा। एक एक समय बढ़ाते गए ना, पहले एक समय बढ़ा के दिखाया था उन्होंने, अभी ये दूसरा समय बढ़ा, दो समय बढ़े। यहाँ भी छेद भागहार ही होता है। छेद भागहार कहा जाता होता है अपूर्णांक में होता है ये भागहार, पूर्ण संख्या का भागहार नहीं है, अपूर्णांकों में है। तीन तीन समय अधिक स्थिति को ग्रहण कर स्थित जीव के असंख्यात भाग वृद्धि का अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार तब तक छेद भाग होकर जाता है जब तक कि बादर एकेंद्रीय के ध्रुव स्थिति को जघन्य परिता संख्यात से खंडित कर उसमें से एक खंड के ऊपर उसको ही उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने से उसमें से एक अंक कम एक खंड की वृद्धि नहीं हो जाती। यानी कितना होना चाहिए? अभी जैसे हमने 75 तक थे तो 80 तक जब तक नहीं आते, यानी कितनी वृद्धि होनी चाहिए? उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड जितना है उतनी वृद्धि होगी, तब हम उसको कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। अब तक क्या कहते थे उसको? असंख्यात भाग वृद्धि। तत्पश्चात पूरे खंड प्रमाण वृद्धि हो जाने पर समभागहार होता है। ये देखो दो शब्द आते हैं, समभागहार और ये छेद भागहार, क्योंकि जघन्य परिता संख्यात में एक अधिक उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर ऊपर की विरलन राशि में से कम करने के लिए एक रूप उपलब्ध होता है। ओ, ऊपर की राशि में से कम करना था, हमने बढ़ाया था क्या? पहले जो नहीं आया था वो 1584 वाला, अब यहाँ संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ और असंख्यात भाग वृद्धि की समाप्ति हो जाती है। देखो हमने 75 को क्या देखा था, 16 से भाग देने पर 75 आए थे और 15 से भाग देने पर 80 आते हैं, तो बीच वाले जो 76 बढ़े, 77 हुए, 78 हुए, 79 हुए, उसको असंख्यात भाग वृद्धि कही। अब 80 हो जाते हैं तब उसको हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। तो यहाँ के आगे जो 81, 82, 83 उस सबको हम क्या कहेंगे, संख्यात भाग वृद्धि। इसके ऊपर अन्य जीव स्थितिघात को करता हुआ एक एक समय अधिक स्थिति को लेकर स्थित हुआ, यहाँ भी संख्यात भाग वृद्धि ही होती है। इस वृद्धि का छेद भाग होता है। अभी 81, 82 के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 में से कुछ कम करना पड़ेगा, यानी वो 14 पूर्णांक समथिंग होगा, उसको कहेंगे छेद भागहार है। अभी हम थोड़े थोड़े गणित में एक्सपर्ट होने लगे हैं ना। प्रेरणा में आपको एकदम गणितज्ञ करके छोड़ेंगे। यथा ऊपर के एक एक अंक के ऊपर स्थित राशि का नीचे विरलन करके, देखो पहले में अभी पहले हमने उत्कृष्ट परिता संख्यात को विरलन कर किया था और उसमें वो राशि डिवाइड किए थे। अब उत्कृष्ट संख्यात को विरलन किया, उसमें वो राशि डिवाइड किए। जैसे पहले हमने 16 में डिवाइड की तो वो 75 आया था अभी 1200 को लेने, और अभी 15 में डिवाइड करेंगे तो 80 आए, तो उसका विरलन नीचे कर देना 80 का, और फिर 80 में 80 डिस्ट्रीब्यूट करो तो 1 आया। तो हमको 81 लानी है, अभी अगली फिगर हमको 81 लानी है, उसके लिए नया भागहार क्या होगा, तो 14 point something, हाँ 15 में कुछ कम करना है। हाँ, इस वृद्धि का छेद भाग होता है। यथा ऊपर के एक एक अंक के ऊपर स्थित राशि का नीचे विरलन करके ऊपर उसको ही समखंड कर देने पर हर एक अंक के प्रति एक एक समय प्राप्त होता है। जैसे हमने 80 का विरलन किया और उसमें 80 ही डिस्ट्रीब्यूट किए, हर एक के प्रति एक एक मिलेगा ना, 80 लड़कों में हमने 80 रुपए बांट दिए समान रूप से, तो हर एक को एक एक रुपए मिलेगा। वैसे यहाँ एक एक आ गया उसमें। फिर इसको ऊपर के अंकों पर स्थित राशियों में मिलाकर, ऊपर के राशियों में कौन कौन से थे, 80-80 थे सब में, उसमें एक एक मिला दिया हमने, उसमें एक एक मिला देते हैं तो हर एक की, देखो अब हम इसको करके दिखाएंगे आपको पूरा। हमारे पास 1200 थे तो हमने पहले 16 का विरलन किया, उसमें 1200 बांटे, हाँ 15 में बांटे थे ना, तो हर एक के ऊपर 80 आए। अभी हम संख्यात में आ गए, अब यहाँ 80 का विरलन कर देना, यहाँ से एक 80 लेकर उसका विरलन करना और फिर 80 उसमें बांट देना, तो अभी 81 आ गए, 81 आना चाहिए हमको। अब इसमें से एक एक लेकर यहाँ एक एक में मिला दो, तो यहाँ 81 हो जाएगा। तो 80 यहाँ से एक लिया, यहाँ का एक 80 मिटाया और उसमें से एक एक बांट दिया आगे, तो 80 स्थानों में एक घट हो जाएगा, सॉरी 80 स्थानों में 15 में, हाँ अपूर्णांक में रहेगा। देखो यदि यहाँ 80 स्थान होते तो एक की हानि होकर 79 में बढ़ जाता और एक आगे स्थान, तो ये 80 जो है यहाँ 80 मिटाएंगे और हर एक के लिए हमको 81-81 करने हैं, तो ऐसे ही 80 में एक की हानि होती है तो 15 में कितनी होती है, इस तरह से उसका जो जितना आएगा प्रमाण उसको उसमें से 15 में से घटाना है। ये भागहार नया कैसे निकालते हैं, इसी पद्धति से। कहां तक आए थे, इस क्रम से, अरे मैं 126 पर आ गई मैं। इसको ऊपर के अंकों पर स्थित राशियों में मिलाकर समकरण करते हुए हीन रूपों के प्रमाण को कहते हैं। कितने रूप हीन हो जाएंगे, हमने देखा ना वो 15 में से घटाना है तो कितना करना है, उसको कहते एक अधिक नीचे की विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक रूप की हानि पाई जाती है, नीचे हमने 80 पकड़े तो 81 अगर होते हैं तो एक की हानि होती है, तो ऊपर की विरलन राशि में वह कितनी प्राप्त होगी। इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर एक रूप का असंख्यात्वा भाग प्राप्त होता है। यानी नीचे 81 में एक की हानि होती है तो 15 में कितनी होती है, तो 15/81 हो जाएगी, तो एक का असंख्यात्वा भाग आता है। इसको उत्कृष्ट संख्यात में से कम करने पर, ये पहले अपना उदाहरण नहीं आया था ना, वहां भी हमने 100 में से एक घटाया था, ऐसा ही नहीं, वहां पहला वाले फिर याद करो, 1584 वाला जो नहीं जम रहा था, तो नीचे हमने कितने देखे थे, वहां पर 100 का हिसाब वहां लाया था, तो 100 में एक मिलाना, 101 में एक की हानि होती है ऐसा लेना वहां, तो वहां 16 में कितने की हानि होगी ऐसा वहां लिया था, तो 16/101 आता है, तो इतना 1600 में से कम करना, तो वो कैसा आएगा, 1600 × 101, हाँ −16/101, ये नया भागहार आया है ना। अब इस नया भागहार से पुराने 1600 को भाग दे दो, तो ये भागहार का भागहार एक 101 आगे चला जाएगा, और इसके नीचे 1600 × 101 −16 आ जाएंगे, तो यहाँ 16 कितने बार है, 100 बार है। अभी इसका इसका चला जाएगा तो 101 संख्या रहने वाली है बाद में, फिर अटक गए बीच में। चलो इस समझाते करते करते समझाती हूँ ना, और घोटाला होता है, देखो इसको फिर पढ़ते। ये मेथड अपने ख्याल में आनी चाहिए, ऊपर के विरलन में से एक को लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही ऊपर जो समखंड दिया राशि उसको भी देते हैं, तो एक एक आता है, एक एक आया है, अभी वो ऊपर मिलाना है उसमें, तो नीचे एक बढ़कर ले लेना, 80 के बदले 81 में एक की हानि होती है, ऊपर 15 होगी उसमें कितनी हानि होती है, जितनी हानि होती है उतनी उसमें से माइनस कर देना, तो नया भागहार का प्रमाण आता है। हिन्द रूपों का प्रमाण कहते हैं 126 पृष्ठ पर, एक अधिक नीचे की विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक रूप की हानि पाई जाती है तो ऊपर की विरलन राशि में वह कितनी प्राप्त होगी। इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर एक रूप का असंख्यात्वा भाग प्राप्त होता है। इसको उत्कृष्ट संख्यात में से कम करने पर शेष एक रूप का असंख्यात बहुभाग और एक कम उत्कृष्ट संख्यात भागहार होता है। आगे दो दो समय बढ़ने पर संख्यात भाग वृद्धि का स्थान होता है, इसका भी छेद भागहार, ये भी अपूर्णांक संख्याएं है, 14 पूर्णांक समथिंग हमने मान लिए ना, हमने 15 को मान लिया था उत्कृष्ट संख्यात, तो नीचे वाले जो सारे अपूर्णांक छेद भागहार हो गए। तीन तीन समय बढ़ने पर भी संख्यात भाग वृद्धि होती है, इस प्रकार तब तक छेद भागहार होकर जाता है जब तक कि बादर एकेंद्रीय ध्रुव स्थिति को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करके फिर उसमें से एक खंड को एक कम उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक कम एक खंड प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। क्या कहना चाहते हैं, ये इसकी भाषा भूल जाओ, पहले हमने 15 से भाग दिया था, हाँ तो एक एक खंड कितना है, अभी हम 1200 का उदाहरण लेंगे तो 80 का एक एक खंड आया था, अब नया खंड कितना होगा, तो 14 से भाग देने पर जितना आएगा उतना जब तक एक खंड नहीं होता है तब तक वो तब उसके पहले अपूर्णांकों में भागहार होगा, छेद भागहार होगा, 15 का 14 होगा तो समभागार हो गया, उसके आगे आगे एक एक बढ़ाना है तो उसके छेद भागार हो गए, पूरा एक माइनस करना है ना भागार में से, उसके लिए कितना बढ़ना चाहिए उस भागार से खंडित करने पर, जितना एक खंड का प्रमाण आएगा उतना जब तक नहीं बढ़ता है तब तक उसको हम उसके पहले पहले छेद भागार कहेंगे। अपनी भाषा में भागार 15 से 14 आएगा तो उसको समभागार कहेंगे, बीच वाले जो भागार हो गए वो उसको सबको हम छेद भागार कहेंगे, क्योंकि हम वहाँ काल तो एक एक समय से बढ़ता हुआ देखना है, तो हर एक 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 समय बढ़ाएंगे तो भागार तो एक एक से बढ़ने वाला नहीं है या कम नहीं होने वाला है, तो अपूर्णांकों में ही कम होगा, क्योंकि असंख्यात से भाग देने तो एक का असंख्यातवा भाग, एक का असंख्यातवा भाग, इतना ही घटता चले जाएगा। संपूर्ण खंड प्रमाण वृद्धि हो चुकने पर समभागार होता है, यानी पूर्णांक होता है। जैसे हमने अभी 14 से भाग देने पर जो संख्या आई उतना एक खंड वहां बढ़ गया तो हम कहेंगे अभी समभागार हुआ, फिर बीच में छेद भागार हो गए, फिर जब 13 का भागार हो जाएगा तो हम कहेंगे वो समभागार हुआ, बीच वाले अपूर्णांकों में हो गए। शंका कर कहते हैं वह कैसे, उसका समाधान, एक कम उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, पहले उत्कृष्ट संख्यात तक आए थे, पूरा एक कम करना है ना, छेद भागार नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे आगे वाला एक रूप कम होगा तभी, हमने जो 15 मान लिया था उसके बदले 14 को लेना है, तो उसके बदले यहाँ क्या लिखा, एक कम उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, उपरिम विरलन के एक रूप पर रखी हुई राशि को समखंड कर देने पर वृद्धि का प्रमाण होता है। इसको उपरिम रूपों पर रखी हुई राशियों के ऊपर देकर समकरण करते हुए एक अधिक नीचे की विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर, चूंकि एक अंक की हानि होती है अतः एक अधिक नीचे की विरलन राशि का ऊपर की विरलन राशि में भाग देने पर एक अंक आता है। पूरा एक अंक प्राप्त होने के लिए ऊपर कितना बढ़ाना चाहिए, एक दो तीन समय बढ़कर नहीं चलेगा, पूरा एक उतना भाग उसमें बढ़ाएंगे, उसको ऊपरी विरलन राशि में से कम करने पर एक कम उत्कृष्ट संख्यात भागार होता है। जैसे पहले हमने असंख्यात और संख्यात के लिए देखा था, पहले हम 16 का भाग देते थे, फिर 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम 75 से 80 तक वृद्धि हो जाएगी, तब नीचे भी वो छेदहार छेद भागार के बिना समभागार डायरेक्ट आएगा, ऐसे यहाँ पर भी करना, 80 से आगे वाली फिगर को ही लेना जो 14 से भाग जाती है। फिर इसका बादल एकेंद्री की ध्रुव स्थिति में भाग देने पर संख्यात भाग वृद्धि के समय प्राप्त होते हैं। इस प्रकार छेद भागार और समभागार के द्वारा स्थिति घात का आश्रय करके, क्या कहते हैं, ये स्थिति घात करने वाले जीवों की बात है, क्योंकि हमको एक एक समय बढ़ते हुए बातें लेनी है, तो वहाँ एक एक समय बढ़ाना है, उसके लिए भागार कैसे होगा, हीन होता चला जाएगा, तो कभी अपूर्णांक हो गए कभी पूर्णांक हो गए, कभी अपूर्णांक हो गए कभी पूर्णांक हो गए, इस तरह से भागहार हीन होता चला जाएगा और वहां समय एक एक बढ़ता चला जाएगा। स्थिति घात का आश्रय करके ध्रुव स्थिति भागहार के 2 अंक प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। ये ध्रुव स्थिति एक 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 समय से बढ़ते 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 जब 2 गुना होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हाँ, संख्यात गुणा वृद्धि। मिनिमम संख्या 2 है ना, तो डबल हुई तो अभी हम कहेंगे 2 गुना हो गई, इस तरह से। अभी बाकी चीज हम कल देखेंगे इसको। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। अश्विन भाई।